ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारतीय सशस्त्र बलों ने कल रात पाकिस्तान द्वारा उत्तरी तथा पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइलों से किए गए सभी हमलों को विफल कर दिया है। हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में सैन्य ठिकानों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के स्थानों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर 8 मिसाइलों को दागा गया था। भारतीय हवाई रक्षा इकाइयों ने इन सभी मिसाइलों को चिन्हित और नष्ट कर दिया। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के बड़े प्रयास को विफल करते हुए कम से कम 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि आतंकवादियों का एक बड़ा समूह घुसपैठ की कोशिश में था, जिसे भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने असफल कर दिया है। बीएसएफ के सतर्क सैनिकों ने ढांडर चौकी पर पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। जी भूपेंद्र, भारत ने पाकिस्तान की कूटनीति घेराबंदी किस तरह से की है?
जी लवली, भारतीय सशस्त्र बलों और बीएसएफ ने कल रात जम्मू और कश्मीर में कई शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के दुर्भावनापूर्ण प्रयासों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। जम्मू पर हवाई हमले के दृश्य बिल्कुल इजराइल पर हमास की तर्ज पर किए गए हमले की याद दिला रहे थे, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादी संगठन हमास की तरह काम कर रही है और भारतीय शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले को एकीकृत काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूएस ग्रेड S-400 ट्रांस सिस्टम बराक 8 मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों और DRDO की ड्रोन विरोधी तकनीकों के जरिए विफल किया गया, जिसने शहरों के चारों ओर एक अभेद्य हवाई सुरक्षा ढाल बना दी थी। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक मजबूत संदेश दिया गया है कि ना भारत ना केवल अपने आसमान की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से सफलतापूर्वक ढेर भी कर सकता है। और इस बीच नई दिल्ली में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कई उच्च स्तरीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। और अभी शाम को कुछ ही देर बाद जो है एक संयुक्त प्रेस वार्ता होनी है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित ताजा जानकारी अधिकारीगण साझा करेंगे। जी लवली
जी, धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। सरकार देश में आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर तैयारियों और अंतर मंत्रालय समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और तैयारियों को लेकर अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसी तरह की एक बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शाम होने जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कहा है कि ATM, नकद जमा और निकासी मशीनों के साथ साथ सभी डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं। बैंकों ने ग्राहकों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि देश भर में पर्याप्त ईंधन भंडार है और आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। इंडियन ऑयल ने लोगों से घबराहट में ईंधन की खरीद के लिए पेट्रोल पंप पर अनावश्यक भीड़ से बचने को कहा है। इस बीच नागरिक सुरक्षा निदेशालय आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी में ITO पर लगाए गए एयर रेड सायरन का परीक्षण करेगा, जो 15 से 20 मिनट की अवधि के लिए होगा। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। आनंद कुमार के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय के रिपोर्टिंग न करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी और सूत्र आधारित सूचना अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने कारगिल युद्ध, 2008 मुंबई आतंकी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए समय पूर्व रिपोर्टिंग के जोखिमों का हवाला दिया। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
भारत की कार्रवाई से घबराया हुआ पाकिस्तान अब फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को फैलाने के लिए डिजिटल स्पेस का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान अपनी जीत की झूठी खबरें दे रहा है, जो दुनिया के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने और जनता की धारणा में हेर फेर करने, विकृत करने के लिए जानबूझकर किए गए उसके प्रयासों को दर्शाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।
लगातार भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। प्रोपेगेंडा में माहिर इस्लामाबाद सोशल मीडिया पर भ्रामक और फर्जी वीडियो और तस्वीरों के जरिए भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार फैला रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने एक पुराने वीडियो को वायरल कर ये दावा किया है कि उसने नियंत्रण रेखा पर 20 राज बटालियन की एक चौकी को तबाह कर दिया। ये पूरी तरह से गलत बयानी है, क्योंकि ऐसी कोई भी सेना की टुकड़ी भारत में नहीं है। झूठ बोलने में माहिर पाकिस्तान ने अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए एक विस्फोट की तस्वीर के जरिए झूठ फैलाने का प्रयास किया, जिसमें उसने जम्मू एयरफोर्स बेस पर धमाके का दावा किया है। भारत के खिलाफ ऑनलाइन चलाए जा रहे झूठे अभियान में पाकिस्तान ने एक और वीडियो के जरिए गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमले का दावा किया, जबकि ये वीडियो एक तेल के टैंकर में हुए विस्फोट का है। इन हरकतों से साफ है कि दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुके पाकिस्तान ने झूठ बोलकर अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी खो दी है, और वह पूरी तरह से हताश हो चुका है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्रोताओं, भारतीय सशस्त्र बलों या वर्तमान स्थिति से संबंधित कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है तो उसकी सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को अवश्य दें। आप ऐसी जानकारी को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी साझा कर सकते हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद से भारत के दृष्टिकोण को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है। यूरोपीय संघ और इसके सभी 27 सदस्य देशों ने एक स्वर में सशक्त बयान जारी किया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर आज कुल 138 उड़ानें रद्द की गईं। इसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय आगमन, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान, 63 घरेलू आगमन और 66 घरेलू प्रस्थान शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी एयरलाइन से उड़ान की अद्यतन जानकारी और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था के बारे में जानकारी लें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार ने 9 ड्रोन रोधी प्रणालियां खरीदने का निर्णय किया है। इन्हें नार्को आतंकवाद पर नजर रखने के लिए राज्य के 6 सीमावर्ती जिलों में तैनात किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने आतंक पीड़ितों और युद्ध में घायल नागरिकों को फरिश्ते योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस बीच पंजाब पुलिस ने आज एक ड्रग तस्कर को मार गिराया और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। स्वापक नियंत्रक कार्यबल ने एक तस्कर को जवाबी फायरिंग में मार गिराया। एक अन्य अभियान में तरन तारण पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय नार्को आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी उपकरणों की लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लाइसेंसिंग जानकारी और उपकरण के प्रकार की मंजूरी का उचित खुलासा नहीं किया गया है। अमेरिका के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को नया पोप बनाया गया है। कैथोलिक चर्च के इतिहास में पोप बनने वाले वो पहले अमरीकी हैं। उन्हें पोप लियो चौदहवें के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप लियो चौदहवें को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि पोप लियो का कैथोलिक चर्च का नेतृत्व ऐसे समय में हुआ है जब शांति, सद्भाव, एकजुटता और सेवा के आदर्शों को बढ़ावा देने में बहुत महत्व है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में नई दिल्ली में निशानेबाजी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माने और शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम युवा वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों में शंभवी का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL 2025 के शेष सत्र को एक सप्ताह के लिए निलंबित करने की घोषणा की है। यह निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद आया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।